اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرت یا تلفال سے مدتین، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9۔
کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔
الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعون الیہ مریب۔ اب اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہہ رہا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے ہسٹری سے؟ تمہیں ہسٹری نہیں معلوم تمام پیغمبروں کی، تمام لوگوں کی، کہ ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہے۔ اس سے پہلے آئے ہیں قوموں کے پاس، نوح علیہ السلام، عاد علیہ السلام، ثمود علیہ السلام، اور اس کے علاوہ اور جو اس کے بعد آئے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمام رسول جو تھے وہ بالکل واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن ان کی قوم نے کیا کیا، ان کی قوم نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، مطلب فردو ایدیہم فی افواہہم، یعنی کہتے ہیں نا کسی کا منہ بند کرنا تو ہم ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں، گھوسا مار دیں گے، بھائی چپ رہو، یہ اس کا یہ معنی ہے کہ نہیں ہمیں تمہیں نہیں سننا، ہمیں تمہیں نہیں دیکھنا، تمہیں تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ دے کے بھیجا گیا ہے ہمیں اس میں شک ہے، اور اس میں ہمیں بہت بھاری شک ہے، یعنی شک کیا ہے کہ تم رسول نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو۔ اب اس کو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آیا ہے، اگر تم نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو تم بھی وہی کر رہے ہو جو اس سے پہلے قوموں نے کیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانا، حالانکہ انہوں نے سب نے معجزے بھی دکھائے، کرامات بھی دکھائی، سب کچھ دکھایا اور واضح کھول کھول کے بیان کیا، اللہ کی طرف بلایا، 30-40 سال، 1000 سال تک پیغمبر لگے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن ان کا قوم کا عمل کیا تھا کہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، ان کے منہ پہ ہاتھ روک دیتے تھے کہ بس کرو، ہم نہیں سن رہے تمہیں۔ یہ اگر دیکھا جائے، اس کو ہم دیکھیں تو ہم بھی سیم یہی کر رہے ہیں، उन लोगों ने तो जबानी कह दिया था हम अमली तौर पे कर रहे हैं। अगर मैं कुरान वो कैसे वो ऐसे कि अगर मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रही और अल्लाह को मैंने नजबुलैन नहीं बनाया और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मैं शब रोज नहीं गुजार रही, अपने तमाम मामला कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं कर रही, तो मैं अभी सेम वही कर रही हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है ना कुरान की न रसूल की। अब मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ कि मुझे शक है, मुझे शक है कि 1400 साल हो गए, अब क्या अभी तक चलता रहेगा ये सारा कुछ? तो नया जमाना है, नया दौर है, साइंस है, इसने तरक्की कर ली, नई नई इजादात हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो अब ये मैं शक में हो गई हूँ कि नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है। तो अब अगर मैं अमल नहीं कर रही तो ये मेरा शक है, मैं बीमार हूँ। हालांकि मुझे शक में नहीं आना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा ही मुझे अपने लिए किया है। अगर मैं ये चीज को अपने दिमाग को मैं बिठा लूं और बार बार मुझे अपने आप से कहना होगा, बार बार मुझे अपने नफ्स को सुधारना होगा, उस पर काम करना होगा, वो मुझे दुनिया की तरफ वाकिफ करेगा, मैं उसको अल्लाह और रसूल की रोशनी से देखूंगी। तो ये सब काम हमें अपने आप पर खुद करने होते हैं, हम दूसरों को नहीं कह सकते। दूसरों पे हमें काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दूसरों के अमल के जवाब दे नहीं है, हम अपने अमल के जवाब दे हैं। और दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं उसका जवाब आखरत में मिलेगा, मुझे उसका नतीजा आखरत में निकलेगा। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं ऐसे काम करूं, ऐसी जिंदगी बसर करूं कि नतीजा उसका अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क और कब्र में जन्नत का नजारा और आखिरत में अल्लाह का दीदार, इसके तहत अगर मैंने इस तरीके से नहीं किया और मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारती रही जैसे और मुसलमान गुजार रहे हैं, तो मुझ में और उनमें कुछ फर्क नहीं है। मैं औरों को भी नहीं देखूंगी, मैं अपने आप को देखूंगी। बार बार मैं कह रही हूँ, अब मैं अपने आप को देखूंगी। देखें, रसूल पाक सल्लम की पैगंबर थे, नबी थे, मौजे रात दिन देखते थे, लेकिन उनकी जमात में भी मुनाफिकीन थे। अब मुझे इस पे सोचना होगा कि वहां क्यों मुनाफिक थे, वो लोग क्यों मुनाफिक थे? कोई वजह तो थी जिस वजह से अल्लाह ताला ने उनको मुनाफिक कहा और उनको बास को निकाल दिया और बास को बाद में निकाला मुनाफिक मुसलमान। हालांकि वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, हज करते थे, उम्रे करते थे, खैर खराब करते थे, जकात देते थे, खिदमत करते थे, सब कुछ करते थे, चंदे भी देते थे, लेकिन थे मुनाफिक। तो ये एक इतना बारीक नुक्ता है जो हमें समझना चाहिए और कि कहीं हम मुनाफिक ना हो जाए। और मुनाफिक को अल्लाह ताला ने मुनाफिक की जगह दोजख में नहीं रखी, दोजख के गले में रखी है जहां शिफात का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मुसलमान मुनाफिक होता है, ये भी याद रखे, मुसलमान मुनाफिक होता है। जो हिंदू और यहूद और नसारा है वो तो मान ही नहीं रहे ना, अल्लाह को तो सब मानते हैं लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं मान रहे, लेकिन हमने तो कलमा पढ़ लिया है, हम तो नमाजें पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम मुनाफिक हैं। अब हमें ये सोचना चाहिए कहीं अल्लाह ताला हमें मुनाफिक की टोली में ना शामिल कर दे, कहीं हमें अल्लाह ताला यहूद और नसारा की टोली में ना शामिल कर दे। तो मुझे हर वक्त अपने आप से लड़ाई लड़नी है, जद्दोजहद करनी है और अपने नफ्स से काम करना है। नफ्स जो है वो दुनिया की तरफ रागब करता है, वो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ रागब करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है, शऊर दिया है और फिर मुझे अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया और कुरान दिया। तो मैं वो नफ्स एक कहेगा, मैं उसको जो नफ्स कह रहा है मुझसे, जो अमल करवाना चाह रहा है वो नफ्स, तो मुझे उसको देखना है कि क्या वो सीधा रास्ता है या वो अल्लाह और रसूल की नाराजगी का सबब तो नहीं बनेगा, क्या वो मुझे कब्र में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्या वो आखिरत में मुझे दोजख के गड्ढे में तो नहीं डाल देगा। अगर मैं इस तरीके से सोच के जिंदगी गुजारूं सुबह से शाम तक, हर काम हर वक्त, ये 24 घंटे का है, ये एक वक्त का नहीं है, ये 24 घंटे का है, हर वक्त मुझे सोचना है। इसलिए कि ये दुनिया सामने है, अल्लाह सामने नहीं है, रसूल पाक सामने नहीं है और कुरान की गहराई हम जानते नहीं है, अल्लाह पे हमारा यकीन नहीं है, तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है और काम करना है अपने नफ्स से, और अल्लाह, और फिर ये सोचना है कि मुझे अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है, मुझे दुनिया के लिए नहीं पैदा किया। मैं इल्म हासिल करूंगी तो मैं अल्लाह की पहचान का इल्म हासिल करूंगी, मैं अल्लाह की मार्फत का इल्म हासिल करूंगी, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का इल्म हासिल करूंगी। इस तरीके से मुझे अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है, और उसके साथ साथ अगर मैं दुनिया का इल्म हासिल कर लूं तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया का इल्म हासिल करूं और उसका नतीजा अल्लाह की नाराजगी बने तो ऐसे इल्म का फायदा क्या। मैं ऐसा इल्म हासिल करूं जिसमें अल्लाह की रजा हो और मेरी मुझे अल्लाह का दीदार मिल जाए, मुझे कब्र में जन्नत के दरवाजे खुल जाए, तो मुझे ऐसा इल्म हासिल करना है, इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। अगर नहीं तो हम भी वही कर रहे हैं जो उन पहले से कौमों ने किया अपने पैगंबरों के साथ, अल्लाह ताला उनके साथ क्या सलूक किया वही सलूक अल्लाह ताला हमारे साथ करेगा। अल्लाह की सुन्नत एक ही है सबके लिए, अल्लाह ये नहीं देखेगा कि मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, अल्लाह ये नहीं देखेगा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूँ, अल्लाह ये कुछ नहीं देखेगा। अल्लाह देखेगा मेरी नीयत को, और मेरे उस नीयत के मुताबिक जो मैंने नीयत की उसके मुताबिक क्या मैं अमल कर रही हूँ, और अल्लाह ताला मुझसे मेरा पूछेगा, मुझसे मेरे किसी दुनिया रिश्तेदार का नहीं पूछेगा, ना शौहर का पूछेगा, ना बीवी का पूछेगा, ना माँ बाप का, ना बच्चों का, किसी का नहीं पूछेगा, अल्लाह ताला मुझसे मेरा पूछेगा। तो मुझे 24 घंटे जो ये दुनिया जिंदगी गुजारनी है ये आखिरत के लिए गुजारनी है, कब्र को सामने रखना है, मौत का कुछ पता नहीं। तो हर वक्त ये सोचते रहना है कि कब्र में जो मैं कर रही हूँ, जो खा रही हूँ, जो पी रही हूँ, जो रस्म रवाज जो कुछ भी कर रही हूँ, क्या उसका रिजल्ट अल्लाह की नाराजगी और कब्र की अजाब बनेगा। ये अगर हम हर वक्त अपने आप पर एक्सरसाइज करते रहे तो ज्यादा बेहतर है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कालत रसूल अफिल्लाह शक्कुन फतेह समावात वल अर्थ यद उकुम ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا اتريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتوا بسلطان مبين उन्होंने जवाब क्या दिया अपने रसूलों, हर उम्मत ने अपने रसूलों को जवाब दिया कि हमें शक है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है। तो हालांकि अल्लाह वो है जो जमीन आसमान का पैदा करने वाला है, यानी फतरत का मतलब है बगैर किसी असबाब के उसने जमीन आसमान को पैदा किया, तो जो जमीन आसमान का मालिक है बनाने वाला है, तो तुम्हें वो बुलाते हैं तुम्हें रसूल मगफरत की तरफ और तुम्हारे गुनाहों की माफ करने की तरफ, जो आखिर जो है आखिरकार तुम्हारी जो आखिर हो यदि मौत का टाइम हो तो वो अच्छा हो रसूलों का। अब ये बताया जा रहा है कि रसूलों की ड्यूटी क्या है, वो तुम्हें क्यों अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वजह क्या है अल्लाह की तरफ क्यों वो बार बार अल्लाह की तरफ कहते हैं, अल्लाह को मकसद जिंदगी बना लो, अल्लाह की रजा के मुताबिक कर को, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर हम अल्लाह को राजी नहीं करेंगे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो हमारी ये दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी, और जो हमारा आखिर होगा यानी मरने का टाइम है वो भी खराब होगा, एक एक इंफरादी तौर पे, एक कौम के तौर पे। जो भी अल्लाह की नाफरमान कौम होती है या एक नाफरमान आदमी होता है अल्लाह ताला उसको मोहलत देता जाता है, लेकिन जब वो नहीं समझता और वो अपने नाफरमानियों में लगा रहता है तो फिर अल्लाह की तरफ से जो अजाब आता है तो वो इंतहाई खराब आता है, दुनिया में भी और आखिर एक फर्द के लिए भी एक कौम के लिए भी। तो रसूलों की जो ड्यूटी है वो है हमें अल्लाह की तरफ बुलाना और हमने जो गलतियां की हैं उसकी अल्लाह से माफी दिलवाना अल्लाह ताला। तो लेकिन जब हम नहीं आते तो एक जब इंसान मरने लगता है तो उस वक्त जो अल्लाह का नाफरमान है उसकी मौत कैसी होती है, जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी मौत कैसी होती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसी तरह एक कौम है कि जो अल्लाह को लेते हैं जो कौम, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी तरक्की देता है, आखिरत में भी तरक्की, और उसकी तरक्की मुस्तकिल तौर पर होती है। लेकिन जो कौम अल्लाह के नाफरमानियों में डूब जाती है तो उसका अंजाम बुरा होता है। अब ये जो लोग हैं वो उनसे क्या कहते हैं, अपने रसूलों से, वो रसूल हुए ये वक्त का इमाम हुआ उससे क्या कहते हैं, कहते हैं कालु इन अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, कि तुम तो हमारी तरह हो, हम खाते हैं पीते हैं शादियां कर रहे हैं जॉबे कर रहे हैं, ये तुम तो हमारी तरह हो, हमें तो तुम्हें कोई खासियत नजर नहीं आ रही, हमें तुम्हें कोई खासियत। अब ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इंसान ही को हिदायत वाला भेजता है, अल्लाह ताला फरिश्ते नहीं भेजता। अब इंसान है, बशर है, तो उसके लिए बशर ही आएगा ताकि वो नमूने के तौर पर नमूना रहे, अमल करके दिखाए एक बशर की हैसियत से। लेकिन हम लोगों के जहन में क्या है, हम लोगों के जहन में ये है कि जो अल्लाह वाला है और जो रसूल है वो दुनियावी कोई काम नहीं करेंगे, कोई शादी ब्याह ये वो मेहनत मजदूरी कुछ नहीं करेंगे, एक कोने में बैठ के बस इबादत और रियाजत और मराखबे करते रहेंगे, ये और उनसे कश्म करामात जारी होते रहेंगे। ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये तरीका नहीं है। जो नबी होता है वो इंसानों के लिए हिदायत का रहनुमा होता है, वो हिदायत देता है, उसको अल्लाह ताला चुनता है। ये नबी रसूल और वक्त का इमाम, ये इख्तियार अल्लाह का है, अल्लाह ताला उनको चुनता है, और किसके लिए चुनता है, अपने मखलूक से, क्योंकि अल्लाह ताला अपने मखलूक से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उनको रहनुमाई के लिए अपने तक पहुंचने के लिए उस तमाम दुनिया की मोहब्बत के नुकसान बताने के लिए और आखिरत के फवाइद बताने के लिए अल्लाह ताला ये रहनुमा दुनिया में चुनता है और क़यामत तक चुनता रहेगा अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने कहा कि एक जमात क़यामत तक रहेगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगी। और अच्छा, अब आगे से ये जवाब क्या कहते हैं, तो ली दून अंस तो सुदूना अम्मा काना या बो अबा बे सुल्तान मुबीन, कहते हैं कि तुम जो हमें ये तबलीग कर रहे हो, जो हमें ये नसीहत कर रहे हो, तो तुम हमें रोक रहे हो हमारे उस अबाउजाद के तौर तरीकों से, हमारे उस अबाउजाद के उस रस्म रवाज उन तौर तरीके और इबादत से, और उसे तुम हमें रोक रहे हो। हम लेकिन कोई दलील नहीं है, तो हमारे सामने कोई खुली दलील पेश करो, यानी कोई मौजा पेश करो कि तुम नबी हो और तुम वक्त के इमाम हो, कोई हालांकि ये वो मौजा और करामत ये किसी के वली और वो रसूल होने की दलील नहीं है। ये तो अगर एक हिंदू भी जब रियाजत करता है तो अल्लाह ताला उसको भी इतनी सलाहियत दे देता है कि वो भी ये करश्मे दिखा सकता है। अल्लाह जाहिर जो मेहनत करेगा, जिस मकसद के लिए मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसको देगा। अब हिंदू जो है वो दुनिया के लिए करता है सारे रियाजतें और सब, तो अल्लाह ताला उसको दे देता है, अल्लाह ताला तो किसी का लेकिन उसने अल्लाह को मानता है लेकिन रसूल को नहीं मानता, तो उसका जो कुछ भी है दुनिया तक है, आखिरत में कुछ ऐसा नहीं है। इसी तरह मुसलमान भी है, अगर वो एक मुसलमान मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है दुनिया के लिए कर रहा है, तो उसे दुनिया में मिलेगा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ये अल्लाह ताला ने कह दिया मुसलमान का भी कि अगर उसकी नियत सिर्फ दुनिया है, उसके लिए वो मेहनत और जद्दोजहद और कोशिश है सब कुछ कर रहा है, तो अल्लाह ताला से दुनिया में जो उसके नसीब में वो दे देगा, लेकिन आखिरत में उसका फिर हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला मुझसे कह रहा है कि देखो ये दुनिया इतनी अहम, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया कोई अहमियत नहीं रखती, हमें कोशिश करनी है आखिरत के नतीजे की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया में जो काम करें उसका नतीजा हम आखिरत में देखें कि उसका नतीजा कब्र में क्या मिलेगा, क्योंकि पहले क़यामत कब्र है, कब्र में क्या नतीजा मिलेगा और फिर आखिरत में हमारा हशर क्या होगा। तो दुनिया की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अमल करें, जो काम करें, जो खाएं पिए, اٹھے بیٹھے تعلقات جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہم یہ خیال رکھیں کہ اس سے ہماری آخرت نہ خراب ہو, اس سے اللہ اور رسول ناراض نہ ہو. اگر یہ ایسے طریقے سے نہیں کریں گے, اس وقت جو مسلمانوں کی ہم لوگوں کی حالت ہے وہ یہی ہے, سیم ہم ان کے نقشے یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر چلنا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اپنے نبی کو تو وہ مانتے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو, یہ تو حضور آئے تو اب اس کے بعد نبوت بند ہو گئی ہے. اب جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا عملی طور پہ, اب ہم بھی مانتے ہیں رسول پاک, لیکن عمل تو ہمارا نہیں ہے. ہمارا عمل کس کا؟ یہود و نصارہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو میرا عمل دیکھ رہا, میری نیت دیکھ رہا, اور جیسا عمل ہوگا, جیسے نیت ہوگی, اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کرے گا, انہیں لوگوں کے ساتھ ہمیں آخرت میں کھڑا کرے گا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ دنیا ہم اس نظریے پہ گزارے کہ اصل ہے اللہ, اصل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اس پہ حسنا, اور مجھے پوری زندگی میرا رازق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, وہ میری عزت دولت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت بھی اس کے, جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر میں اس کو کیوں نہ لوں, پھر میں اس کو کیوں نہ جانوں, اس کو کیوں نہ پہچانوں, میں اس سے کنیکشن کیوں نہ کروں سب کچھ. تو یہ جو تعلیم ہے, اصل تعلیم ہے وہ ہے دین کی, اور دین کو سمجھنا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے. ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی, روزے کر رکھ لیے, حج کر لیے, عمرے کر لی, نہیں. تو آپ کی سب سے پہلے نیت آئی, پھر اس کے بعد آپ کا وہ نصب العین آیا کہ آپ یہ زندگی صبح سے شام تک آپ کن اصولوں پہ کرو. ہمارے اصول کیا ہے؟ قرآن و سنت. اگر اس کے مطابق نہیں ہے, نیت ہماری اللہ نہیں ہے, مقصد ہمارا اللہ نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, تو پھر میں تو جیسے اور یہود و نصارہ میں بھی وہی, انہوں نے جیسے انکار کر دیا اسی طرح ہم نے بھی انکار کر دیا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سوچیں سمجھیں, جو عمل کریں غور و فکر تدبر سے کریں, یہ اپنی مرضی سے اس طریقے سے زندگی نہ گزاریں جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس طریقے سے مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے, کوئی نکلے یا نہ نکلے, مجھے اس سے نکلنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا, یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں, اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موضوعوں کی نفی کر دی کہ موضوعوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلنا ولکن اللہ یمن اللہ من یشاء من عبادی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں سے کہ ہاں تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم ہماری طرح ہو, تو ہاں ہم تمہاری طرح ہے, جسم میں تو تمہاری طرح ہے, ہمارے ہاں ہمارے بھی دل ہے, ہمارے پاس بھی کھانا پینا ہے, ہمارے بھی اولاد ہے, بال بچے ہیں, سب کچھ ہے, تمہاری طرح ہے. لیکن یہ یاد رکھو الگ ہے کہ رسول اور اللہ والوں کو اللہ کہتا ہے, اللہ چنتا ہے, یہ اختیار اللہ کا ہے, کسی بندے کا نہیں ہے. کوئی خود سے رسول نہیں بن سکتا, خود سے نبی نہیں بن سکتا, خود سے ولی اللہ نہیں بن سکتا, اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. وَمَا كَانَ لَنَا لِنَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہ ہر وقت حضور سے معجزے مانگ رہے ہیں, ہم لوگ کرامتیں مانگتے رہتے ہیں کہ اس کے یہ اگر ولی اللہ ہے تو اس کی کرامت کیا ہے. تو یہ یاد رکھیں, یہ اصول ہے اللہ کا کہ چاہے وہ رسول ہے, چاہے وقت کا امام ہے, چاہے کرامت ہے, چاہے معجزہ ہے, وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ رسول سے معجزہ ظاہر کروا دیتا ہے اور ولی اللہ سے کرامت ظاہر کر. لیکن یہ کوئی نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ کوئی اللہ والے ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. تو ہمیں اللہ پھر کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن کو چاہیے कि वो सिर्फ अल्लाह ही पे भरोसा रखे, यानी असल है अल्लाह, उससे मुझे अल्लाह पे यकीन लाना है। ये सबसे जरूरी चीज है कि हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है। अगर हमें अल्लाह पे यकीन हो तो हम कभी भी किसी के लिहाज से भी परेशान नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारा अल्लाह से कनेक्शन हो जाता है और हम समझ लेते हैं कि अल्लाह ही मेरा राजिक है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही मुझे दुख और सुख देता है, अल्लाह ही के हाथ में इज्जत और मौत और बेइज्जती है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, तो फिर मैं बंदों से बेनियाज हो जाती हूँ, बंदों की तरफ मेरी नजर नहीं होती, फिर मेरी दुनिया की तरफ नजर नहीं होती, मेरी सिर्फ अल्लाह की तरफ होती। जो अल्लाह ताला मुझे देता जाता है, जिस हाल में मुझे रखता है, मैं खुश रहती हूँ, राजी बजा रहती हूँ। क्यों? कि मुझे यकीन होता है कि ये अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ये चाह रहा है। अब मैं इसकी मिसाल दूं कि अब हमने अल्लाह का रास्ता ले लिया, अब अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगा दी, कहीं भी ड्यूटी लगा दी, कपड़े धोने की, कहीं भी किसी के घर में ड्यूटी लगा दी, कहीं बाहर लगा दी, अपने घर में लगा दी, अपने उस्ताद क्या लगा दी, कपड़े धोने की, बर्तन धोने की, ये मैं मामूली मिसाल आपको पेश कर रही हूँ, बाजार से सौदा लाने की, ये तमाम ड्यूटी। अब ड्यूटी तो ड्यूटी है, वो तो मुझे मुस्तकिल मिजाज से देनी होगी। अब मैं अपने आप को परेशान करूं कि भाई ये मैं कब तक करती रहूंगी। अब जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, एक सा काम करने में परेशान हो जाते हैं कि ये हम कब तक करेंगे। तो ये जब हमारी परेशानी है, इसको हमें खत्म करना चाहिए। क्यों? हम ये खत्म कैसे होगी? ये खत्म ऐसे होगी कि देने वाला अल्लाह है, करवाने वाला अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला ने जिस लिहाज से मुझे रखा हुआ है, जिस हैसियत में मुझसे रखा हुआ है, या मुझे अल्लाह ताला ने गवर्नर के हैसियत से रखा हुआ है, या एक नौकर और गुलाम की हैसियत से रखा हुआ है, ये तमाम हैसियतें अल्लाह ने मुझे दी हैं। इसको मैं अल्लाह की तरफ रुजू करके इन तमाम ड्यूटियों को, जो भी ड्यूटी है, उसको इंतहाई ईमानदारी और इंतहाई खुलूस से दूं। सामने तो मखलूक है, सामने तो अल्लाह नहीं है। जो ड्यूटियां दे रही हूँ वो मैं मखलूक की दे रही हूँ। तो अब मुझे ये करना है कि मैं इस मखलूक, मैं तो परेशान हो जाती हूँ, तो अब मैं ये करूंगी कि इस परेशानी से अब निकालने के लिए मैं ये सोचूंगी कि ये मखलूक के लिए मैं ड्यूटी नहीं दे रही, ये अल्लाह ने मुझे ड्यूटी दी है, मुझे अल्लाह ताला ने अपने लिए दिया, अपना कुर्ब हासिल करने के लिए दिया। तो मैं ये सामने मखलूक है, ये मैं मखलूक के लिए ड्यूटी नहीं दे रही, मैं अल्लाह के लिए दे रही हूँ। चाहे वो एक बीवी है, चाहे वो एक शौहर है, चाहे एक बहन है, चाहे एक भांजी है, भतीजी है, चच्ची है, जो भी चाहे, चाहे बॉस है, जो ड्यूटी है वो मैं अपने अल्लाह के लिए दे रही हूँ। उसकी तरफ से आई है ये ड्यूटी, चाहे कम हैसियत की है, चाहे ज्यादा हैसियत की है, इससे मुझे परेशान नहीं होना। क्योंकि इन चीजों में इज्जत और बेइज्जती नहीं है, सारी इज्जत और बेइज्जती और फजीलत अल्लाह और रसूल के हाथ में है, इन चीजों में नहीं है। जब मेरा रुख अल्लाह की तरफ, नियत अल्लाह की तरफ हो जाएगी, रुख रसूल पाक सल्लम की तरफ हो जाएगा, और जो काम मैं कर रही हूँ अल्लाह और रसूल की रजा के लिए कर रही हूँ, तो फिर मुझे मेरे ऊपर ये तमाम चीजें हावी नहीं होंगी, ये मुझे परेशान नहीं करेंगी, ये मुझे यक्षा नहीं लगेगा कि हर वक्त एक ही काम नहीं। जाहिर है मुस्तकिल मिजाजी तो असल चीज है। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैंने अक्सर देखा है, लोग कोई भी काम शुरू करते हैं फौरन परेशान हो जाते हैं कि ये क्या यार, कोई फायदा भी नहीं। कोई बिजनेस शुरू करेंगे, कोई छोटी सी दुकान शुरू करेंगे, फौरन बंद कर देते हैं, फौरन खत्म कर देते हैं कि हमें फायदा नहीं है। ऐसे फायदा नहीं होता। अल्लाह ताला को एक तो नियत, सबसे पहले नियत, दूसरी अल्लाह ताला को मुस्तकिल मिजाजी, अल्लाह कर रहे हैं अल्लाह के लिए। अब मुस्तकिल मिजाजी जब ही आती है, जब हम अल्लाह के लिए, सुकून हमें जब ही आता है जब हम अल्लाह की नियत से करते हैं। जब हम दुनिया की नियत से करते हैं, हम जल्दी उकसा भी जाते हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं, और फिर हमें फायदा भी नहीं होता उससे। जब हमारी दुनिया की नियत होती है तो हमें सुकून भी नहीं मिलता, परेशानी ही परेशानी मिलती है, क्योंकि नजर दुनिया पे है। लेकिन जब मेरी नजर अल्लाह पे होगी और सब हर चीज का मैं तवक्कुल अल्लाह पे करूंगी कि सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह मुझे यहाँ कह रहा है कि तुम मोमिन जो है वो अल्लाह पे तवक्कल करे। अब किस लिहाज से तवक्कल करे? यही जो दुनिया के काम है, सारी जो ड्यूटियां लगाई हैं, जो जिम्मेदारियां दी हुई हैं, उसको मैं खुलूस और मोहब्बत से अल्लाह पे नजर, अल्लाह से तो हम हर वक्त बात कर सकते हैं, हर वक्त हम अल्लाह से, अगर हमें परेशानी है, किसी किस्म की परेशानी है, दुख है, कुछ है, हम अल्लाह से बात करें, अल्लाह से कहें, अगर अल्लाह हम नहीं अल्लाह वाले से बात करें, उससे हम रब्ता करें, उससे कहें, कहने से हमारी जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी और हमें इलाज भी समझ में आ जाएगा, हमें वो नूर भी हासिल हो जाएगा। अगर हमारी नीयत सही है, तरीका सही है, तो हमें वो नूर भी आ जाएगा, वो इत्मीनान भी आ जाएगा। उस जिस चीज से हम परेशान है वो परेशानी भी दूर हो जाएगी और वो जो मसले का है वो हल भी समझ में आ जाएगा। तो हमें कोशिश करने की, हमें 24 घंटे तवक्कल अल्लाह करने हैं। जो कुछ है अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हम अपने हाथ में लेते हैं तो हम परेशान होते हैं, जब हम अल्लाह के हाथ में दे देते हैं तो हमारी सारी परेशानियां अल्लाह की तरफ। अब हमारी एक ही परेशानी रह गई कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, रसूल पाक सल्लम नाराज ना हो जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए इस तरीके से जिंदगी गुजारे तो हमारे लिए अच्छा है, अगर नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह ताला पर भरोसा न रखें जबकि उसने हमें हमारी राहें सुझाई हैं। वल्लाह जो राहें तुम हमें दोगे हम उन पर सब ही करेंगे। तवक्कल करने वालों को यही लायक है कि अल्लाह ही पर तवक्कल करें।
यहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया वमा लना ला अल्लाह तवक्कल अल्लाह वहदा वक़द हदाना सुबुलना व नसबिरना अला मा आज़ैतुमूना वलल्लाह फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अल्लाह कहता है कि क्या वजह है कि तुम अल्लाह पे भरोसा न करो। अब अल्लाह पे भरोसा जब होगा, जब हम अल्लाह वालों से जुड़ जाएंगे। ये आसान काम नहीं है, हमें अल्लाह वालों को ढूंढना चाहिए और उनके साथ और उनकी सोहबत में रह के उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम अल्लाह पे तवक्कल कर सकते हैं। वो क्योंकि तमाम हर कुछ अल्लाह के हाथ में है, सारी रास्ते सारे सब कुछ अल्लाह के रास्ते में। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि हम जो कुछ अल्लाह के लिए करेंगे, जो कुछ हमें अल्लाह ने दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, जो तो हम अल्लाह को सामने रख के करें, अल्लाह की रजा के लिए करें तो हमें परेशानी नहीं होगी। जो अब हम एक ड्यूटी दे रहे हैं और लोग हमें अज़ियत पहुंचा रहे हैं, हम पे ताने कस रहे हैं, हमें जलील समझ रहे हैं, हमें कमतर समझ रहे हैं, हमें अच्छी नजर से नहीं देख रहे। ये तो दुनिया है ना, अच्छी नजर से नहीं देख रहे। बिलफर्ज झाड़ू की ड्यूटी लग गई, कौन पसंद करेगा, कौन कहेगा? सब कहेंगे लो भाई ड्यूटी क्या लगी है, झाड़ू देने की ड्यूटी लगी। हमें जाहिर है अगर हम अल्लाह वाले से नहीं जुड़े तो हमें भी ये फिर बात बुरी लगेगी, वो दिल पे हमारे जाके लगेगी। लेकिन नहीं, जब मैं अल्लाह वाले से जुड़ गई हूँ और अल्लाह के लिए कर रही हूँ तो वो जो कहने वाले हैं वो कहते रहेंगे, हमें उसकी तकलीफ नहीं होगी। अगर वक्ती तौर पर तकलीफ भी हुई तो हम उस पर सब्र करेंगे, क्योंकि वो जानते नहीं। हमें ये कह के अपने आप को कि वो जानते नहीं कि इस झाड़ू देने में अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या नेमतें मिल रही हैं, क्या क्या अल्लाह ताला, क्यों कि मोमिन के लिए तो निशा अल्लाह ताला ने बता दिया। अगर तुम मोमिन चाहते हो, मोमिन बनना चाहते हो, मुत्तकी बनना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, रसूल पाकसल्लम का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें तवक्कल अल्लाह पे करना होगा। तवक्कल का माना यह है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान सिर्फ असबाब को इस्तेमाल करेगा, नतीजा अल्लाह पे छोड़ेगा। तमाम कोशिशें जो कर जिंदगी में करेगा वो अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए करेगा। दुनिया के जितने काम करेगा वो अल्लाह की रजा के लिए करेगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करेगा। तो फिर तवक्कल ही तवक्कल, तवक्कल ऐसे आता है वैसे नहीं आता। रब बनाते ना फिर दुनिया हसनता हूँ, फिलहाल हसनता हूँ।